एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा साथी इस दिलचस्प चर्चा के लिए तैयार।
तो आज का हमारा विषय है लोक संगीत। अच्छा, ये शब्द सुनते क्या आता है जहन में?
शायद वो पुराने जमाने के गीत, गांव देहात।
हाँ, अक्सर यही होता है। मतलब एक तस्वीर बन जाती है, धूल भरी पगडंडियां, चौपाल पर गाते लोग, है ना?
बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर, क्या ये पूरी है?
यही तो बात है। आज हम मार्क स्लोबिन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब फोक म्यूजिक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सहारे इसी धारणा को थोड़ा खुरेदने वाले हैं।
अच्छा,
हाँ, ये किताब दिखाती है कि लोक संगीत वो सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं है जिसे म्यूजियम में रख दिया जाए, बल्कि ये तो समुदायों में पहचान बनाने, रिश्ते जोड़ने की एक एक लगातार चलती हुई धड़कती हुई प्रक्रिया है। ये तो सोचने वाली बात है। और आज के दौर में ये समझना जरूरी क्यों है? मतलब आज की दुनिया तो इतनी बदल गई है।
वही तो। आज दुनिया ग्लोबल है, डिजिटल है, संस्कृतियां इतनी तेजी से मिल रही हैं, घुल रही हैं।
तो ऐसे में इस लोक संगीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की चीज है या आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है?
बिल्कुल, इसी की पड़ताल करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं।
तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, मार्क स्लोबिन।
हाँ, मार्क स्लोबिन। देखिए, ये कोई सिर्फ कमरे में बैठकर लिखने वाले विद्वान नहीं है, ये एक जाने माने एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं।
एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, मतलब वो विशेषज्ञ जो संगीत और संस्कृति के गहरे रिश्ते का अध्ययन करते हैं। और स्लोबिन की खासियत यह है कि वो जमीनी हकीकत से जुड़कर काम करते हैं।
अच्छा, मतलब फील्ड वर्क वगैरह।
बिल्कुल जी हाँ, उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग समुदायों के बीच रहकर उनके संगीत को समझा है। अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी यूरोप की यहूदी संगीत, जिसे क्लेज़मर कहते हैं, उस तक।
वाह, तो उनका नजरिया काफी वसीय होगा, मतलब सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं।
बिल्कुल, उनका नजरिया वैश्विक है। वो ये नहीं देखते कि संगीत सुनने में कैसा है, बल्कि ये देखते हैं कि वो समुदायों के लिए करता क्या है।
करता क्या है? मतलब
कैसे संगीत पहचान बनाता है, कैसे लोग उसके जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं। वो लोक शब्द पर जो ऐतिहासिक बोझ है ना, उसे हटाकर उसे आज के जमाने के लिए एक उपयोगी औजार की तरह पेश करते हैं।
ये बात उनके काम को वाकई खास बनाती होगी।
जी हाँ,
तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहते हैं स्लोबन?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं वो ये कि लोक संगीत ये सिर्फ चीजों का कोई संग्रह नहीं है, जैसे कि पुराने गानों की कोई लिस्ट हो।
अच्छा, तो फिर क्या है?
नहीं, ये दरअसल संगीत बनाने की, उसे साझा करने की और उसे मायने देने की एक एक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाला काम है, जिसकी जड़ें किसी न किसी समुदाय की पहचान में होती है।
प्रक्रिया यानी प्रोसेस, ये दिलचस्प है।
हाँ, और ये किताब उस पुरानी थोड़ी रोमांटिक सोच को भी चुनौती देती है कि लोक संगीत किसी राष्ट्र की शुद्ध आत्मा की आवाज है।
हाँ, वो जो विचार था कि गांव के अनपढ़ लोगों के गीत ही असली होते हैं, मिलावट रहित।
बिल्कुल, वो 18वीं-19वीं सदी की यूरोपियन सोच थी, योहान गॉटफ्रीड वॉन हर्डर जैसे विद्वानों की।
लेकिन स्लोबन कहते हैं कि आज की दुनिया तो बहुत अलग है, सब कुछ मिला जुला है।
हाँ, वो पूछते हैं, आज की इस भागती दौड़ती मिली जुली दुनिया में, जहाँ कोई भी पूरी तरह अलग थलग नहीं है, इस शुद्धता का क्या मतलब रह जाता है?
सही सवाल है।
तो वो कहते हैं कि हमें ये पूछना बंद करना चाहिए कि कौन से गाने लोक हैं, इसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि संगीत कैसे बनाया जा रहा है, क्यों साझा किया जा रहा है और किसी खास समूह के लिए उसका क्या मतलब है।
तो मतलब क्या से ज्यादा कैसे और क्यों पर ध्यान देना है?
बिल्कुल, तो इस किताब का मकसद एक तरह से हमारे संगीत को देखने का नजरिया बदलना है।
हाँ, कि बस लोक पॉप या शास्त्रीय।
जी, उसे हटाकर स्लोबिन समाज में संगीत के पूरे ताने बाने को समझने के लिए एक ज्यादा बारीक, कई परतों वाला नक्शा देते हैं, एक टूलकिट जिससे हम कहीं भी किसी भी समुदाय की संगीतमय जिंदगी को समझ सकें।
अच्छा, तो ये टूलकिट या नक्शा कैसा है? चलिए इसके कुछ अहम हिस्सों को समझते हैं।
हाँ, तो सबसे पहले स्लोबिन बात करते हैं खुद लोक शब्द की। इसमें ही एक पेच है।
पेच? कैसा पेच?
देखिए, इस शब्द का इतिहास थोड़ा बोझिल है। जैसा हमने कहा, ये यूरोप में राष्ट्रवाद और रोमांटिक विचारों के साथ उभरा और अक्सर इसे ऊंची कला या शहरी संस्कृति के सामने खड़ा किया गया।
हाँ, मतलब एक तरह का विभाजन।
जी, और इसी सोच ने कई बेकार के विभाजन बना दिए। लोग बनाम कला, गांव बनाम शहर, परंपरा बनाम आधुनिकता, असली बनाम बाजारी।
ये तो हम आज भी सुनते हैं कई बार।
सुनते हैं, लेकिन स्लोबिन कहते हैं कि आज की दुनिया में ये विभाजन ठीक से काम नहीं करते। आज लोग शहरों में रह रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, मीडिया हर जगह है, संस्कृतियां घुलमिल रही हैं, तो ये पुराने खांचे फिट नहीं बैठते।
ठीक है, तो अगर ये पुराने खांचे काम के नहीं हैं, तो संगीत की इस जटिल दुनिया को समझें कैसे? यहाँ स्लोबिन क्या तरीका बताते हैं?
यहीं पर स्लोबिन अपना सबसे महत्वपूर्ण और मेरे ख्याल से सबसे मज़ेदार औजार पेश करते हैं। उनका चार क्षेत्रीय ढांचा, फोर फील्ड फ्रेमवर्क।
चार क्षेत्रीय ढांचा, ये क्या है?
इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे संगीत जीवन पर असर डालने वाले चार घेरे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह, एक के अंदर एक।
अच्छा, चार घेरे कौन कौन से?
सबसे बाहरी और सबसे ताकतवर घेरा है सुपर कल्चर। हाँ, ये है बड़े पैमाने की ताकतों का असर, सरकार, बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउस, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। सोचिए रेडियो या टीवी पर जो हिट गाने बजते हैं, बड़ी फिल्मों का संगीत, या सरकार की नीतियां जो संगीत शिक्षा या प्रसारण को कंट्रोल करती हैं।
अच्छा, मतलब जो सबसे बड़े लेवल पर प्रभाव डालता है।
बिल्कुल, ये सुपर कल्चर एक तरह से माहौल बनाता है, संगीत बाजार के नियम तय करता है।
ठीक है, ये हुआ पहला घेरा। इसके बाद
फिर आता है इंटर कल्चर का घेरा। ये वो जगह है, वो स्पेस है जहां अलग अलग समुदाय, अलग अलग संगीत आपस में मिलते हैं, टकराते हैं या एक दूसरे से कुछ लेते देते हैं।
उदाहरण के तौर पर,
जैसे कोई मल्टीकल्चरल शहर है, वहां का म्यूजिक सीन, या कोई बड़ा संगीत समारोह जहां अलग अलग तरह के कलाकार आते हैं, या फिर आजकल ये जो वर्ल्ड म्यूजिक का बाजार है।
हाँ हाँ, समझ गई, जहां अलग अलग कल्चर का संगीत एक साथ आता है।
जी, ये मेल मिलाप और कभी कभी तनाव का भी क्षेत्र होता है।
ठीक है, सुपर कल्चर, फिर इंटर कल्चर, तीसरा घेरा कौन सा है?
इसके अंदर है सब कल्चर।
सब कल्चर
उस चीज के सबसे करीब है जिसे हम आमतौर पर लोक संगीत समझते आए हैं।
सब कल्चर मतलब
ये किसी भी ऐसे समूह का संगीत हो सकता है जिसकी अपनी एक साझा पहचान हो। ये पहचान धर्म पर आधारित हो सकती है, जातीयता पर, किसी खास इलाके पर, किसी पेशे पर, या आजकल तो किसी ऑनलाइन रुचि या शौक पर भी।
अरे वाह, मतलब गेमिंग कम्युनिटी का अपना संगीत भी सब कल्चर में आ सकता है?
क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। ये वो छोटी छोटी संगीत हैं, स्लोबिन इन्हें माइक्रो म्यूजिक्स कहते हैं, जो किसी खास समूह के लिए बहुत मायने रखते हैं, उनके आपसी बंधन मजबूत करते हैं, जैसे किसी पूजा मंडली के भजन, या किसी मजदूर यूनियन के गीत, या जैसे मैंने कहा गेमर्स के मीम वाले गाने।
ये तो बहुत व्यापक परिभाषा है। और चौथा घेरा?
और इन सब घेरों के ठीक केंद्र में बीचों बीच कौन है? व्यक्ति,
इंसान, खुद।
हाँ, स्लोबिन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि संस्कृति कोई हवा में तैरती चीज नहीं है, उसे व्यक्ति ही बनाते हैं, महसूस करते हैं और बदलते हैं। हर इंसान इन सारे घेरों के प्रभावों, सुपर कल्चर, इंटर कल्चर और अपने खुद के एक या कई सब कल्चर के बीच से गुजरता है, और इसी से वो अपनी पसंद नापसंद बनाता है, अपना एक अनूठा म्यूजिकल टेस्ट, अपना साउंडस्केप तैयार करता है। आखिरकार संगीत का अनुभव तो व्यक्तिगत ही होता है ना।
वाह, ये चार घेरों वाला मॉडल तो सच में संगीत को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। मतलब सिर्फ धुन या ताल नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा सामाजिक ताना बाना नजर आने लगता है।
बिल्कुल, और यहीं से हम स्लोबिन की अगली अहम बात पर आते हैं, संगीत, जगह और पहचान का गहरा रिश्ता।
हाँ, ये तो महसूस भी होता है, कई गाने किसी खास जगह की याद दिलाते हैं।
जी, स्लोबिन बताते हैं कि कैसे संगीत अक्सर किसी खास जगह से गहराई से जुड़ा होता है, अपनी मिट्टी, अपना गांव, शहर की कोई खास गली या कोई पवित्र स्थान। गाने उस जगह के इतिहास, वहां के माहौल, लोगों के जज्बात का आईना बन जाते हैं।
और जब लोग अपनी जगह से दूर चले जाते हैं, तब क्या होता है?
हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जब लोग अपनी जगह से विस्थापित होते हैं, यानी डायस्पोरा या प्रवासी समुदाय बनते हैं, तब संगीत की भूमिका और भी ज्यादा मार्मिक और जरूरी हो जाती है।
कैसे?
सोचिए, जो लोग अपना वतन छोड़कर कहीं और बस गए हैं, उनके लिए संगीत क्या बन जाता है? स्लोबिन एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं संगीत एक पोर्टेबल मातृभूमि, पोर्टेबल होमलैंड बन जाता है।
पोर्टेबल मातृभूमि मतलब जिसे साथ ले जाया जा सके।
हाँ, एक ऐसी चीज जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं और जो उन्हें हजारों मील दूर रहकर भी एक तरह से अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। अक्सर ये यादें थोड़ी आदर्शवादी भी हो जाती हैं, लेकिन जुड़ाव बना रहता है।
ये तो कमाल का विचार है, इसका कोई ठोस उदाहरण भी देते हैं स्लोबिन?
हाँ बिल्कुल, वो क्लेज़मर संगीत का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं।
क्लेज़मर, ये वही जो आपने शुरू में बताया था?
जी,
पूर्वी यूरोप का यहूदी संगीत।
जी हाँ, ये पूर्वी यूरोप के आश्केनाजी यहूदियों का वाद्य संगीत था, जब वहां से यहूदी बड़ी संख्या में पलायन करके अमेरिका और दूसरी जगहों पर गए तो ये संगीत उनके साथ गया।
और वहां जाके क्या हुआ उसका?
वहां ये सिर्फ बचा ही नहीं रहा बल्कि इसने एक नया रूप लिया। इसे दोबारा जिंदा किया गया, इसमें नई चीजें जुड़ी और आज ये दुनिया भर में यहूदी पहचान का एक अहम सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि संगीत कैसे सफर करता है, कैसे बदलता है और पहचान के साथ कैसे जुड़ जाता है।
ये क्लेजमर वाला उदाहरण वाकई बहुत कुछ सिखाता है और ये हमें अगले मुद्दे पर भी लाता है ना, वो जो लोक पुनरुद्धार वाली बात थी।
हाँ, लोक पुनरुद्धार और बाजार, फोक रिवाइवल एंड मार्केटप्लेस, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। 20वीं सदी में खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में एक बड़ी लहर चली जिसे फोक रिवाइवल कहते हैं।
ये क्या था असल में?
स्लोबिन इसे इंटरकल्चरल डायनामिक्स का एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। इसमें हुआ ये कि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे अक्सर मध्यम वर्ग के लोग जैसे पीट सीगर या एलन लोमैक्स जैसे कार्यकर्ता, संगीतकार, रिकॉर्डिस्ट, वो गांव और हाशिए पर पड़े समुदायों के संगीत में कुछ असली, कुछ प्रामाणिक खोजने निकले।
क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे?
वजहें कई थीं, कभी राजनीतिक सक्रियता, सामाजिक विरोध का स्वर ढूंढना, कभी आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से ऊबकर अपनी जड़ों की उदासीन तलाश।
तो इसके नतीजे क्या निकले?
नतीजे जैसा कि अक्सर होता है, मिले जुले रहे। एक तरफ तो इससे कई भूले बिसरे संगीत और कलाकारों को पहचान मिली, जो अच्छी बात थी।
हाँ, वो तो है।
एंटिक बनाकर एक नए शहरी दर्शक के लिए पैक कर दिया गया।
अच्छा, मतलब बाजार के हिसाब से ढाल दिया गया
कुछ हद तक। हाँ, यहीं से लोक संगीत और बाजार के बीच का वो जटिल रिश्ता और गहरा होता है जो बाद में 1980 के दशक में वर्ल्ड म्यूजिक की कैटेगरी बनने के साथ और भी बड़ा हो गया।
तो ये हमेशा एक तनाव बना रहता है कि ये सांस्कृतिक बचाव है या फिर उसका व्यापारिक इस्तेमाल।
बिल्कुल, ये तनाव हमेशा रहता है और ये सवाल आज डिजिटल जमाने में जहां हर चीज तुरंत उपलब्ध है और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है।
हाँ, ये डिजिटल दुनिया वाला पहलू ये हमें स्लोबिन की आखिरी बड़ी अवधारणा पर लाता है ना, कि आज की दुनिया में लोक संगीत का क्या हाल है।
जी, 21वीं सदी, इंटरनेट, यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इन सब ने पूरा नजारा ही बदल दिया है मौलिक रूप से।
कैसे बदल दिया है, इसके फायदे क्या हैं और शायद कुछ चुनौतियां भी होंगी?
अब फायदे तो साफ दिखते हैं। अब छोटे से छोटा दूर दराज का स्थानीय संगीत भी अगर कोई उसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे तो दुनिया भर में पहुंच सकता है।
हाँ, ये तो है।
प्रवासी समुदाय जो दुनिया भर में फैले हैं वो आसानी से अपनी जड़ों के संगीत से जुड़े रह सकते हैं।
पहले अनजान समझे जाने वाले कलाकारों को भी एक वैश्विक मंच मिल सकता है।
और लोग सिर्फ जगह या समुदाय नहीं बल्कि संगीत में अपनी साझा रुचि के आधार पर भी ऑनलाइन नए आभासी सबकल्चर बना सकते हैं।
ये तो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन चुनौतियां क्या हैं?
चुनौतियां भी हैं। एक डर ये है कि कहीं सब कुछ एक जैसा ना हो जाए। क्या स्थानीय रंगत, वो खास पहचान, इस ग्लोबल बहाव में खो रही है, जिसे होमोजेनाइजेशन कहते हैं। और फिर वो बड़ा सवाल आता है स्वामित्व का और सांस्कृतिक विनियोग का,
कल्चरल अप्रोप्रिएशन। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, कल्चरल अप्रोप्रिएशन। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे, ये असल में है क्या?
हाँ, देखिए, इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जब कोई ज्यादा ताकतवर समूह जैसे पश्चिमी पॉप स्टार किसी कमजोर या हाशिए पर पड़े समूह की संस्कृति के किसी तत्व को, जैसे उनका संगीत, पहनावा, कोई धार्मिक प्रतीक, बिना उनकी कहानी समझे, बिना उन्हें सम्मान दिए और अक्सर बिना इजाजत या क्रेडिट दिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है।
अच्छा, जैसे कोई फैशन डिजाइनर किसी आदिवासी कला को कॉपी कर ले।
हाँ, ये एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ मुद्दा सिर्फ नकल का नहीं है, मुद्दा शक्ति के असंतुलन का है, सम्मान की कमी का है और स्रोत समुदाय की भावनाओं का है। इंटरनेट ने इसे फैलाना आसान कर दिया है और इसीलिए इस पर बहस भी तेज हो गई है।
समझ गई। तो टेक्नोलॉजी ने मौके भी दिए हैं और नए मुश्किल सवाल भी खड़े किए हैं।
हाँ,
लेकिन इन सब के बीच स्लोबिन का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या लोक संगीत इस डिजिटल दुनिया में अपनी जगह खो रहा है?
नहीं, दिलचस्प बात यह कि स्लोबिन का मानना है कि नहीं। वो कहते हैं कि इन सारे बड़े तकनीकी और सामाजिक बदलावों के बावजूद वो जो बुनियादी इंसानी जरूरत है ना, संगीत के जरिए अपनी पहचान जाहिर करने की, अपने समुदाय से जुड़ने की, जिसे हम लोक संगीत की प्रक्रिया कह सकते हैं, वो आज भी उतनी ही मजबूत है।
अच्छा।
हाँ, बस वो नए तरीके अपना रही है, नए मंच इस्तेमाल कर रही है, नए रूप ले रही है, लेकिन वो मूल भावना, वो प्रक्रिया, वो अब भी जिंदा है।
तो अगर इस पूरी चर्चा से हमें कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यह है, लोक संगीत कोई ठहरी हुई चीज नहीं, ये एक लगातार चलने वाली बदलती हुई प्रक्रिया है। ये म्यूजियम का आइटम नहीं, जिंदा चीज है।
बिल्कुल सही।
और दूसरी बड़ी बात जो इससे जुड़ी है, वो जो पुरानी रोमांटिक कहानी थी ना, शुद्ध अकेलेपन पे लोक संगीत की, उसे भूल जाना बेहतर है। असल दुनिया में संगीत हमेशा मिलता जुलता है, बदलता रहता है। कोई भी समुदाय पूरी तरह कटा हुआ नहीं होता।
हाँ, और तीसरी बात, वो चार घेरों वाला मॉडल, सुपरकल्चर, इंटरकल्चर, सबकल्चर, व्यक्ति, मुझे लगता है ये संगीत और समाज के रिश्ते को समझने का एक बहुत ही उपयोगी तरीका है। ये दिखाता है कि संगीत पर कहां कहां से कैसे कैसे असर पड़ते हैं।
जी, और चौथा, संगीत पहचान का एक जबरदस्त निशान है, आइडेंटिटी मार्कर। ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारा समूह क्या है। हमारे भजन हो, शादी के गीत हो, हमारे त्योहारों का संगीत हो, ये सब हमारी पहचान से गहरे जुड़े हैं।
बिल्कुल, जैसे भारत में ही देखिए, गरबा सुनते ही गुजरात याद आता है, भांगड़ा से पंजाब, ये सब कल्चर संगीत के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो बॉलीवुड जैसे सुपर कल्चर के असर के बीच भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और उससे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं।
सही कहा। और पांचवी और बहुत जरूरी बात, असली या प्रामाणिक क्या है, ये कोई बाहरी आलोचक या एक्सपर्ट तय नहीं करता, ये वो समुदाय खुद तय करता है जिसके लिए वो संगीत है।
मतलब
अगर किसी समुदाय को लगता है कि कोई नया रीमिक्स किया हुआ भजन या डीजे पर बजने वाला गरबा उनकी आज की भावनाओं और पहचान को सही ढंग से जाहिर करता है, तो उनके लिए वही प्रामाणिक है। प्रामाणिकता कोई बाहर से थोपा गया लेबल नहीं, बल्कि अंदर से महसूस की जाने वाली चीज है।
ये प्रामाणिकता वाली बात तो सोचने पे मजबूर करती है, बहुत गहरा पॉइंट है ये,
है ना। अब कुछ ऐसे खास विचार या कहें कि कोट्स जो इस किताब से निकल कर आते हैं और याद रखने लायक हैं। पहला, जिसे स्लोविन बार बार दोहराते हैं, वो ये कि हमें लोक संगीत को एक संज्ञा यानी चीजों के संग्रह की तरह सोचना बंद करना चाहिए और उसे एक क्रिया यानी संगीत बनाने और जीने के काम की तरह सोचना शुरू करना चाहिए।
फोकस एक्शन पे।
हाँ, संगीत कैसे जिया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ ये कि गाना पुराना है या नया।
ठीक है, दूसरा विचार।
दूसरा विचार जो उन चार घेरों वाले मॉडल से जुड़ा है, हर समुदाय का संगीत प्रभावों के एक शक्ति क्षेत्र, पावर फील्ड के भीतर मौजूद होता है।
जी,
सुपर कल्चर से लेके व्यक्ति तक, लोक संगीत को समझने का मतलब है इस क्षेत्र के भीतर उसकी जगह का नक्शा बनाना।
मतलब कोई भी संगीत अकेला नहीं होता, उसका संदर्भ, उसके कनेक्शंस, ये सब समझना जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरा, प्रामाणिकता पर वो अहम बात, प्रामाणिकता संगीत में कोई अंदरूनी गुण नहीं है, ये तो सम्मान का एक बिल्ला है, बैज ऑफ ऑनर है।
वाह।
जो एक समुदाय उस संगीत को देता है जो उसकी अपनी पहचान और मूल्यों को सबसे शक्तिशाली रूप से व्यक्त करता है।
वाह। मतलब समुदाय तय करता है कि उनके लिए क्या असली है।
जी।
कोई बाहरी पैमाना नहीं है।
जी, ये नजरिया हमें जजमेंटल होने से बचाता है और समुदाय की आवाज सुनने पर जोर देता है।
ये सारे विचार तो वाकई बहुत उपयोगी हैं। तो अब आखिरी सवाल, हम आप जो सुन रहे हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या कर सकते हैं? इनका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है?
हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेत श्रोता बने। अगली बार जब कोई वर्ल्ड म्यूजिक ट्रैक सुने या कोई लोक नृत्य का परफॉर्मेंस देखें या टीवी पर कोई रियलिटी शो में लोक प्रस्तुति देखें, तो थोड़ा रुक कर सोचें।
क्या सोचें?
सोचें कि ये कौन लोग हैं जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, दर्शक कौन हैं, परंपरा के किन पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है और शायद किन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके जरिए पहचान की कौन सी कहानी बताई जा रही है। ये सवाल हमें सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़कर चीजों को समझने में मदद करेंगे।
हाँ, ये तो एक अच्छी आदत बन सकती है। और क्या कर सकते हैं?
दूसरा, हम अपने ही संगीत जीवन को स्लोबिन के उस चार क्षेत्रीय मॉडल से देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक मजेदार एक्सरसाइज हो सकती है।
कैसे?
आपके परिवार में गाए जाने वाले भजन या गीत, दोस्तों के बीच चलने वाले पसंदीदा गाने, आपकी मातृभाषा के गीत, आपके इलाके का संगीत।
ये तो अपने म्यूजिकल वर्ल्ड का नक्शा बनाने जैसा हुआ।
बिल्कुल। और तीसरा, हम अपने आसपास जो लोक संगीत सचमुच में हो रहा है उसकी ज्यादा कद्र करना सीख सकते हैं।
जैसे कि?
जैसे वो मंदिर में होने वाला कीर्तन या शादी ब्याह में पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाने वाले गीत, लग्न गीत, या होली, ईद, नवरात्रि जैसे त्योहारों पर बजने वाला संगीत, या किसी कारीगर का काम करते हुए गुनगुनाना। ये सब वही जीवंत प्रक्रियाएं हैं जिनकी स्लोबन बात कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ पुरानी या पिछड़ी चीज मानकर नजरअंदाज ना करें।
सही बात है। और ये समझ शायद हमें वो जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन वाली बहस है उसे भी ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकती है।
हाँ बिल्कुल, जब हम संगीत को सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि एक समुदाय की पहचान और भावनाओं से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम सम्मान, शक्ति संतुलन और स्रोत समुदाय की सहमति जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं।
और शायद सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई, ये हमें सिखाता है कि परंपराओं को सहेज कर रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें म्यूजियम में बंद करने की बजाय उन्हें जीना, अपनाना और समय के साथ बदलते हुए आगे बढ़ाना जरूरी है। परंपरा कोई जमी हुई झील नहीं, बहती नदी होनी चाहिए।
क्या बात कही, बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही वो यही प्रामाणिकता वाली बात है। ये विचार कितना मुक्त करने वाला है कि असली क्या है ये समुदाय तय करे। ये हमें दूसरों की संस्कृतियों को तुरंत जज करने के बजाय उन्हें समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। और ये देखना भी कितना अद्भुत है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के इतने बड़े बदलावों के बावजूद संगीत के जरिए समुदाय बनाने और पहचान जाहिर करने की वो इंसानी चाहत कितनी मजबूत और जिंदा दिल है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैसे वो चार घेरों वाला मॉडल सुपर इंटरेस्टिंग और व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने के संगीत को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, चाहे वो मुंबई की लोकल ट्रेन में बजता संगीत हो या अमेज़न के जंगल में किसी आदिवासी समुदाय का गीत। ये दिखाता है कि लोक संगीत सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है बल्कि हमारे आज का और हमारे आने वाले कल का एक धड़कता हुआ हिस्सा है। ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।